ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधिसभा बैठक से विद्युतीय व्यापार ई कॉमर्स विधेयक हुआ पारित। भारत में अध्ययनरत नेपाली छात्रा की मृत्यु की घटना की उच्चस्तरीय कूटनैतिक संवाद के माध्यम से छानबीन करने संबंध में सांसदों ने सरकार का किया ध्यानाकृष्ट। समस्या का समाधान न होने पर एनओसी रोकने की शिक्षा मंत्रालय ने दी चेतावनी। बीते अश्विन के दूसरे हफ्ते आए बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त 26 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अर्थ मंत्रालय ने 18 अरब 88 करोड़ रुपए के स्रोत की दी सहमति। और यूक्रेन की जंग खत्म करने की दिशा में रूस और अमेरिका के बीच 3 बातों पर बनी सहमति। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विद्युतीय व्यापार ई कॉमर्स विधेयक 2080 पारित हुआ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने ई कॉमर्स विधेयक को बैठक में पेश किया था, जिसे बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया। मंत्री भंडारी ने विश्वास जताया कि इस विधेयक से तकनीक पर आधारित कारोबार को सहज बनाना और ऑनलाइन ठगी और अनियमितताओं पर नियंत्रण कर पाना आसान होगा। बैठक में ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने सदन को बताया कि भारत सरकार के साथ सहमति के मुताबिक विभिन्न 8 अंतर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया गया है। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने भारत में अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्साल की शंकास्पद मृत्यु की घटना की उच्चस्तरीय कूटनैतिक संवाद के जरिए जांच करने संबंध में सरकार का ध्यानाकृष्ट किया। ये बताते हुए कि प्रकृति लम्साल की मृत्यु के बाद विरोध में उतरे नेपाली विद्यार्थियों पर हुए दुर्व्यवहार सह्य नहीं होंगे, सांसदों ने कहा कि मृत छात्रा के साथ न्याय के लिए सरकार को पहल करनी होगी। सांसदों ने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकृष्ट किया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक फागुन 11 गते रविवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय राज्य ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट में नेपाली छात्रा की मृत्यु और नेपाली विद्यार्थियों के साथ हुए दुर्व्यवहार संबंधी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ओडिशा के लिए एनओसी रोक दिया जाएगा। मंत्रालय ने आज एक बयान जारी कर घटना संबंधी समस्याओं का समाधान न करने पर एनओसी रोकने की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि केआईआईटी में अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल की रहस्यमय मृत्यु और उसके बाद अन्य नेपाली विद्यार्थियों पर हुए दुर्व्यवहार पर उसका ध्यानाकृष्ट हुआ है। बयान में इंस्टीट्यूट के समग्र व्यवहार को निंदनीय बताया गया है। बयान में समस्या समाधान के लिए कूटनैतिक पहल करने का परराष्ट्र मंत्रालय से किए गए अनुरोध की बात भी कही गई है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने कहा कि नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल की मृत्यु और उसके बाद विकसित परिस्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। मंत्री डॉ राणा ने कहा कि भारत के ओडिशा स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में मौजूद नेपाली विद्यार्थियों की स्थिति का संज्ञान लेने और उनकी सुरक्षा के लिए वातावरण बनाने को लेकर जरूरी पहल हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि परराष्ट्र मंत्रालय के कल के प्रयास पर कॉलेज निष्कासित विद्यार्थियों को हॉस्टल में लौटने की अपील कर चुका है और विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पानी जहाज विधेयक को विचार विमर्श के लिए विधायन व्यवस्थापन समिति में भेजा गया है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने पानी जहाज संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक 2081 को धारागत विमर्श के लिए समिति में भेजने के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने बुटवल की छात्रा प्रकृति लम्साल की रहस्यमय मृत्यु की जांच करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कूटनैतिक पहल करने के लिए सरकार का ध्यानाकृष्ट भी किया है। इससे पूर्व राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने तन्हो की बंदीपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के जनप्रतिनिधि द्वारा कर्मचारी पर किए गए हमले की घटना पर आपत्ति जताते हुए छानबीन की मांग की। साथ ही देश में मौजूद विभिन्न हालिया मुद्दों पर सांसदों ने सरकार का ध्यानाकृष्ट किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय की जमीन खोजबीन समिति ने आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में समिति के संयोजक शेखर पौडेल ने विश्वविद्यालय की जमीनों के उपयोग, अतिक्रमण और अतिक्रमण हटाने के लिए कदम संबंध में सुझाव सहित आज रिपोर्ट पेश की। संयोजक पौडेल ने बताया कि दांग में स्थित विश्वविद्यालय की कुल जमीन 1662 बीघा है और देवखुरी इलाके में 1336 बीघा में से 910 बीघा अतिक्रमित है, जहां से विक्रम संवत 2059 से ही विश्वविद्यालय को कोई आमदनी नहीं आई है। रिपोर्ट लेते हुए प्रधानमंत्री एवं विश्वविद्यालय के कुलपति केपी शर्मा ओली ने कहा कि वे अध्ययन और विमर्श करके जल्द ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अर्थ मंत्रालय ने बीते आश्विन के दूसरे हफ्ते आई बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों को मिलाकर 26 पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए 18,88,00,00,00,000 रूपये के स्रोत के लिए सहमति दी है। बता दें कि फागुन 4 गते को इसकी मांग हुई थी और आज उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए स्रोत की सहमति दी। ये परियोजनाएं 13 पुलों और 13 सड़कों की है, जिनमें बीपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अर्निको राजमार्ग लगाए शामिल हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सुशासन के माध्यम से देश में समृद्धि लाने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। आज लमजुंग में प्रथम लमजुंग खेलकूद तथा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन करते हुए मंत्री गुरुंग ने यह बात कही। नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सामाजिक संजाल नियमन के नाम पर अंकुश लगाने के हिसाब से लाया गया विधेयक स्वीकार्य नहीं होगा। आज काठमांडू में नेपाल प्रेस यूनियन के शाखा अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उन्होंने ऐसा कहा। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नेता डॉ शेखर कोरेला ने कहा कि सामाजिक संजाल का नियमन करना जरूरी है, लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाने वाला कानून स्वीकार्य नहीं होगा। सम्मेलन में नेता एनपी साउद, वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही, तारानाथ दहाल लगायत ने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता पर आंच लाने वाले कदम के विरुद्ध वे खड़े रहेंगे। राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस 2081 के संदर्भ में आज सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन परिसर में साफ सफाई कर वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण का शुभारंभ सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने किया था। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क में 19 नए पुल संचालन में आए हैं। सड़क खंड में मौजूद सभी पुराने पुलों की जगह नए पुल बनाए गए हैं। ये जानकारी नागढुंगा मुगलिन सड़क परियोजना पश्चिम खंड के इंजीनियर विजय दरई ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोफ ने कहा है कि यूक्रेन की जंग खत्म करने की दिशा में रूस और अमेरिका के बीच 3 बातों पर सहमति बनी है। रियाद में हुई दोनों देशों के बीच वार्ता में 3 बातों पर सहमति बनी। एक, जल्द से जल्द दोनों देश एक दूसरे के यहां राजदूत नियुक्त करेंगे ताकि दूतावासों को बैंक ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंधों समेत राजनयिक मिशनों की बाधाओं को दूर किया जा सके। दो, लावरोफ ने कहा कि यूक्रेन समझौते की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और अमेरिका को अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने हैं, उसके बाद वे अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करेंगे। तीन, विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण सहयोग और उसे बढ़ाने की शुरुआत करने के हालात पैदा किए जाएंगे। लावरोफ ने कहा यह बहुत उपयोगी बातचीत थी, उन्होंने एक दूसरे को सुना और एक दूसरे की बातों को महत्व दिया। यूक्रेन ने जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और रूस के बीच उसके बिना वार्ता किए जाने पर आपत्ति जताई है। हालांकि जिन मुद्दों पर असहमति थी, लावरोफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका भी जिक्र किया और यूक्रेन के नेटो में शामिल होने को रूस के लिए सीधा खतरा बताया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बातचीत की आलोचना करते हुए कहा कि यूक्रेन की गैर मौजूदगी में यूक्रेन पर बात हुई है। इस बैठक में यूक्रेन और यूरोप के किसी अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया था। वार्ता के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इस बातचीत में एक समय बाद यूरोप को भी साथ आना होगा। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर रूबियो ने कहा कि सभी पक्षों को रियायत देनी होगी, हालांकि इस पर तुरंत बात होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। एक समय पर यूरोप को भी शामिल होना होगा क्योंकि उसने भी प्रतिबंध लगाए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा बैठक से विद्युतीय व्यापार ई कॉमर्स विधेयक हुआ पारित। भारत में अध्ययनरत नेपाली छात्रा की मृत्यु की घटना की उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद के माध्यम से छानबीन करने संबंध में सांसदों ने सरकार का किया ध्यान आकृष्ट। समस्या का समाधान न होने पर एनओसी रोकने की शिक्षा मंत्रालय ने दी चेतावनी। बीते आश्विन के दूसरे हफ्ते आए बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त 26 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अर्थ मंत्रालय ने 18.88 अरब रुपए के स्रोत की दी सहमति। और यूक्रेन की जंग खत्म करने की दिशा में रूस और अमेरिका के बीच 3 बातों पर बनी सहमति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।